नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी का एक उद्बोधन है, गायत्री मंत्र की अद्भुत शक्ति। हम उसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास उनके उद्बोधन के कुछ अंश हैं जो उन्होंने आम भारतीय नागरिकों को ध्यान में रख के दिए थे, तो कोशिश रहेगी ये समझने की कि वंदनीय माता जी के अनुसार आखिर इस गायत्री मंत्र में ऐसी क्या खास शक्ति है जो कहती है कि ये इंसान को महामानव बना सकती है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं जरा।
जी बिल्कुल। वंदनीय माता जी तो मानती थी कि जो गायत्री परिवार इतना फैला है उसका आधार ही ये मंत्र शक्ति है। उनका साफ कहना था कि देखो, अगर कोई पूरी श्रद्धा से, विश्वास से और निष्ठा से इसकी उपासना करे तो वो साधारण मनुष्य नहीं रहता, वो देव मानव, महामानव, यहाँ तक कि ऋषि और संत, हाँ, उस श्रेणी में पहुंच सकता है।
माता जी इसके 24 अक्षरों की जो प्रेरणा शक्ति है उस पे भी बहुत जोर देती हैं। वो कहती हैं कि हर अक्षर को अगर जीवन में उतार लिया जाए तो व्यक्ति ऋषि बन सकता है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर ये होता कैसे है असल में?
हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये कोई मैकेनिकल चीज नहीं है, मतलब सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है। माताजी के अनुसार हर अक्षर ना एक दिव्य प्रेरणा है, एक सद्गुण का प्रतीक है। जैसे मान लीजिए सत्य, सेवा, विवेक, ऐसे गुण। इन गुणों को पहले समझना, फिर अपने जीवन में उतारना, मतलब उनको आत्मसात करना, ये जो प्रक्रिया है यही असली शक्ति जगाती है। ये सिर्फ जुबान से जपना नहीं, ये चेतना का रूपांतरण है। वो अक्सर गुरुदेव का उदाहरण देती थी, याद है? उन्होंने सिर्फ जौ की रोटी और छाछ पर रहकर 24-24 लाख मंत्र जाप के 24 महापुरुष चरण पूरे किए थे।
24 महापुरुष चरण जौ की रोटी और छाछ पर?
जी हाँ, पुरुष चरण मतलब मंत्र शक्ति को सिद्ध करने के बहुत गहन विशेष अनुष्ठान होते हैं। ये उनकी कठोर तपस्या थी और मंत्र में उनका अटूट विश्वास था।
तो मतलब ये हुआ कि शक्ति सिर्फ पढ़ने या जपने से नहीं आती, उसके पीछे तप, अनुशासन और जीवन में उतारना, ये सब जरूरी है।
बिल्कुल, यही तो। और माता जी कहती थी कि ये सिर्फ गुरुदेव जैसे महापुरुषों के लिए ही नहीं है, उनके अनुसार पूरा गायत्री परिवार, वो तो इसका जीता जागता सबूत है। वो इसे एक तरह की भट्टी या कह लीजिए प्रयोगशाला मानती थी, जहां साधारण लोग भी अगर श्रद्धा और कोशिश करें तो देव तुल्य गुणों वाले इंसान बन सकते हैं, मतलब त्यागी, तपस्वी, सेवा करने वाले।
अच्छा, माताजी ने शक्ति के दो स्वरूपों की भी बात की है, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष, और वो व्यावहारिक अध्यात्म कर भी बल देती थी, इसका क्या मतलब है?
हाँ देखिए, परोक्ष शक्ति जो है वो गहरी तपस्या और साधना से जुड़ी है। वो शायद हमें बाहर से सीधे सीधे ना दिखे, लेकिन प्रत्यक्ष शक्ति वो है जिसे हम अपने रोज के जीवन में, अपने कामों में, एक्शन में ला सकते हैं। माताजी इसी व्यावहारिक रास्ते पर, मतलब प्रैक्टिकल रास्ते पर चलने को कहती थीं। उनका मानना था कि यही रास्ता है जिससे अपना भी भला हो और समाज का भी, जिसके फायदे साफ साफ दिखें।
और शायद इसीलिए वो संस्कारों पर इतना जोर देती थीं।
बिल्कुल सही जोड़ा आपने। वो समाज में जो बढ़ती हुई फैशन परस्ती थी, बनावटीपन था, लोगों में आपसी प्यार सम्मान की कमी और ये जो जाति पाति संप्रदाय के नाम पर बंटवारा बढ़ रहा था, उसको लेके वो बहुत चिंतित रहती थीं। वो याद दिलाती थी कि भई ये वही भारत है जहां कभी नदियों को मां मानते थे, पत्थर की मूरत में भगवान देखते थे, तो ये जो गिरावट आई है, उनका मानना था इसका असली कारण है हमारे दिमागों की विकृति, मतलब हमारी सोच गलत हो गई है। संस्कारों का जब पतन होता है तो ये सब समस्याएं आती हैं।
यहाँ एक और बात है जो ध्यान देने वाली है। माताजी इस सब लाभ का श्रेय सिर्फ मंत्र को नहीं देती, वो गुरुदेव की जो तपस्या से कमाई हुई शक्ति है उसको भी क्रेडिट देती हैं।
हाँ हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, कठोर तपस्या की, आत्मसंयम साधा, अपनी वाणी पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण। माताजी कहती थीं इसी साधना के बल पर उनके वचन इतने सिद्ध थे, इतने प्रभावशाली थे, जो कहते थे वो होता था। और उनकी सोच देखिए कितनी विशाल थी, वो पूरी दुनिया के इंसानों को अपना परिवार मानते थे, विश्व मानव ये उनकी कल्पना थी। इससे पता चलता है कि एक व्यक्ति की जो गहरी साधना होती है उसका असर कितना बड़ा, कितना दूर तक हो सकता है।
अच्छा, इसी सिलसिले में माताजी ने फरहाद और लुइस ब्रेल जैसे लोगों का उदाहरण क्यों दिया? इनका गायत्री मंत्र से क्या लेना देना?
देखिए, इन उदाहरणों से वो असल में ये बताना चाह रही थीं कि हर इंसान के अंदर, आपके मेरे सबके अंदर, एक अद्भुत, एक असीम इच्छा शक्ति और क्षमता छुपी हुई है। जैसे फरहाद ने, सोचिए, अपनी जिद से, अपनी प्रबल इच्छा से पहाड़ काट के नहर बना दी। या लुइस ब्रेल, वो देख नहीं सकते थे फिर भी हार नहीं मानी और पूरी दुनिया के दृष्टिहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि बना दी। तो माता जी कहती थीं कि हम सबके अंदर ऐसी ही शक्ति का, ऐसे ही ज्ञान और हिम्मत का एक अनमोल खजाना है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे जगाने की और सही काम में लगाने की।
तो ये सिर्फ अपनी उन्नति की बात नहीं है, ये एक तरह से पूरे समाज को जगाने का, एक सकारात्मक क्रांति लाने का आह्वान भी है।
निश्चित रूप से, बिल्कुल। उनका मानना था कि जब एक इंसान के अंदर सच्चा जोश, पक्की इच्छा शक्ति और सेवा का भाव जगता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है, बड़े से बड़ा काम भी। और जब ऐसे जागे हुए लोग मिलकर एक अच्छे मकसद के लिए काम करते हैं, तो समाज में चमत्कार जैसे परिवर्तन आ सकते हैं।
तो कुल मिलाकर देखें तो वंदनीय माता जी के अनुसार गायत्री मंत्र सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये श्रद्धा, विश्वास, मेहनत और जीवन को बेहतर बनाने की जो तीव्र इच्छा होती है, उसके साथ मिलकर व्यक्ति और समाज दोनों को ऊपर उठाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन सकता है।
जी बिल्कुल सही समझा आपने, यही उनका मूल संदेश है कि हम अपनी अंदर की शक्तियों को पहचाने, वो जो खजाना अंदर छुपा है ना, उसे साधना से, सेवा से जगाएं और उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके भले के लिए, पूरे समाज के विकास के लिए करें।
और शायद हम सबके लिए सोचने वाली बात यही रह जाती है कि हम अपने भीतर छिपी इस असीम क्षमता को कितना पहचानते हैं और उसे बाहर लाने के लिए, उसे जगाने के लिए सच में क्या कर रहे हैं। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
जी, ओम शांति।